ஓம் சாந்தி. ஆஜ் ஹமாரி பட்டி கே பீச் பஹுத் ஹி அனுபவி விஷய சத்தக் சேவாதாரி ஜ்ஞான ரத்னோ கி கான் ஐசே ராஜூ பாய் जो विशेष शाम का समय है तो योग की गहराई और प्रयोग इस विषय पर क्लास कराएंगे. सबसे पहले हम आपका एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं. बहुत ही दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है. राजू भाई की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कई प्रकार की सेवाएं हैं. ऐसे तो आपकी पहचान राजू भाई मुरली वाले, ऐसे भी सब जानते हैं. लगभग 50 साल से आप इस बेहद यज्ञ में अपनी सेवाएं दे रहे हो. आपकी बाबा के प्रति निश्चय विश्वास, प्यार और ज्ञान की गुह्यता को समझना और दूसरों के आगे भी रखना बहुत बड़ी विशेषता है. हम सब जानते हैं कि साकार मुरली में मुरली का सार, प्रश्न उत्तर, धारणा की पॉइंट, वरदान और स्लोगन आप हम सब के लिए तैयार करके भेजते हो. पुराने होंगे पता होगा कि मुरली में पहले इस प्रकार से नहीं आता था, लेकिन काफी सालों से आपने मुरली का अध्ययन करके सबके लिए जैसे तैयार भोजन, हमें मेहनत नहीं करनी पड़े कि मुख्य सार क्या है, और अच्छी तरह से सोच करके ढूंढ करके वरदान स्लोगन आदि भी भेजते, तो ये आपकी विशेष सेवा भी है. और बाबा भी जब आते हैं तभी भी बाबा बोलते और आप मुरली एट ए टाइम टाइप भी करते हो कंप्यूटर में, और वो मुरली सुबह में जल्दी जल्दी है अमृत वेले में जैसे पहुंच जाती है. यहां भी हम होंगे तो नीचे भी लाइन लगेगी मुरली की प्रिंट लेने के लिए, इतना जल्दी मुरली तैयार भी हो जाती है. न सिर्फ मुरली लेकिन हमारा पत्र पुष्प है, दादी जी का भी पत्र, और पत्र पुष्प में भी दादियों के क्लासेस, अव्यक्त इशारे और समाचार, दादी का यादगार सब आप ही तैयार करके भेजते हो. इसका मतलब आप दादियों के भी बहुत बहुत करीब हो, नजदीक हो. आप कोई विशेष दादियों के पास पास साथ साथ रहने का बड़ा अच्छा गोल्डन चांस मिला हुआ है. इसलिए दादियों की भी छोटे से छोटी विशेषताएं या जो भी शक्तियां गुण है उसको आप अच्छी तरह जानते हो, सबको भी उसका परिचय भी कराते हो. देश विदेश में आपकी मुरलियां भी पहुंचती है. और ये भी जो पोस्ट हमारी यज्ञ के प्रति सेंटरों से यज्ञ में आती है वो भी आप ही उनको देखते हो, संभालते हो, और कुछ भी जवाब देना होता तो दादियों के पास बैठ करके जवाब देते थे. हमारी प्रकाशमणि दादी जी के भी आप काफी साल पालना लेकर साथ रह करके आपने अनेक विशेषताओं को अपने में धारण किया. साथ साथ हमारी ग्राम विकास प्रभाग है, उसकी भी सेवाएं बहुत अच्छी तरह से आप सब जानते हो. उस विंग की सेवाएं भी आगे बढ़ाने का श्रेय आपको है, आप अभी उस प्रभाग के वाइस चेयरपर्सन हो ग्राम विकास प्रभाग के। भारत के कोने कोने में कितने गांव हैं, कहते हैं भारत गांव का देश है, तो अंत तक इंटीरियर तक आपने बाबा का संदेश पहुंचाने की सेवाएं की है, सम्मेलन महासम्मेलन अभियान आदि देश भर में या यहाँ भी हेडक्वार्टर में भी आयोजन करते हैं, जिसका विशेष आप आधार मूर्त हो। विदेशों में भी कई जगह आपने सेवा के लिए भ्रमण किया है, तो ऐसी विशेष आत्मा बाबा ने यूपी से चुनी है आपके लिए। यही कहूंगी, कांटों की पगडंडी पर आप हस्ती डगर हो, तारों के बीच आप एक ध्रुव तारा हो, साधना के पथ पर आप सादगी की मिसाल हो, सादगी की मिसाल हो। तो हमें आज योग की गहराई और प्रयोग इस पर प्रकाश डालेंगे और अच्छी तरह एकाग्रता से बातों को सुनकर, सुनते सुनते अपनी एक योगयुक्त स्थिति बनाकर सभी यहां से ओम शांति भवन में बाद में क्लास के बाद 7:45 प्रस्थान करेंगे। ऐसे तो राजू भाई को प्रोग्राम दिया था आपको ही यहाँ योग कराना है, फिर 7:00 के बाद आप प्रस्थान करने वाले थे, लेकिन आज दादी जी का प्रोग्राम है ओम शांति भवन में, तो थोड़ा सा ये चेंज हुआ है। इसलिए सब एकाग्रता से सुने, सुनते सुनते अपनी अव्यक्त स्थिति योगयुक्त स्थिति बनाकर क्लास पूरा होने के बाद ओम शांति भवन में पहुंचेंगे। तो मैं राजू भाई से अनुरोध करती हूँ कि इस विषय पर आप प्रकाश डालें।
ओम शांति। बाबा के इस तपस्या भूमि में आप सबने आते ही सहज योगी जीवन का अनुभव किया होगा। बाबा की याद नेचुरल इस भूमि पर, कहते हैं कण कण से तुम्हारी याद आती है। जहां पर बाबा के कदम पड़े, उनकी ये चरित्र भूमि, कर्म भूमि आज हम सबको कितना शक्तियां प्रदान कर रही है। तो यहां आप सभी पांडव भवन की तपस्या भट्टी का बहुत अच्छा लाभ ले रहे हो। हम सबको बाबा ने सहज योगी जीवन तो बनाई बताई, लेकिन सहज योगी के साथ साथ बाबा कहते हैं अभी समय है श्रेष्ठ योगी बनने का, क्योंकि सहज शब्द से कभी कभी थोड़ा सा अलबेलापन भी आ जाता, सहज है। इसलिए कुछ समय पहले बाबा ने इसको अंडरलाइन किया था, सहज योगी नहीं श्रेष्ठ योगी हो। और वो श्रेष्ठ योगी जीवन जिसके अंदर दिव्यता है, रूहानियत है, अलौकिकता है, योगी जीवन है, योग लगाने वाले नहीं। यदि यथार्थ रूप में हम सबने योग को समझा है तो कोई भी बैठ करके हठ क्रियाएं करने की जरूरत नहीं है। सहज श्रेष्ठ योगी जीवन है चलते फिरते खाते पीते बैठते सर्व संबंधों से एक बाबा की प्यार भरी याद है। योग को बाबा कहते हैं याद, योग नहीं कहो, बाबा की याद। योग अर्थात मिलन, योग अर्थात संबंध। जितना हमारा बाबा के साथ स्नेह भरा संबंध है उतना उसकी याद नेचुरल बनी रहती है। और बाबा की याद में जो आत्माएं समाई रहती हैं उनके जीवन में बाबा के सर्व गुण सर्व शक्तियां प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती हैं। अगर हम बाबा को कहते हैं बाबा आप प्यार के सागर हो, आप सुख के सागर हो, शांति के सागर हो, हम आपके बच्चे हैं और बाबा से हमारा संबंध जुटा हुआ है, तो वो शांति, वो प्रेम, वो पवित्रता, वो शक्ति हमारे हर कर्म से दिखाई देनी चाहिए। योग की गहराई, अगर इस शब्द को हम समझने का प्रयास करें, जब हम अपने स्वस्वरूप को पहचानते हैं, स्वस्वरूप में स्थित होते हैं कि हम इस देह से एक भिन्न एक चैतन्य शक्ति हैं, योग का जो पहला आधार है अपने आप को आत्मा निश्चय करो, इस देह भान से डिटैच हो जाओ, ये अलग है मैं अलग हूं। प्रारंभ में जब योग शुरू करते हैं उसी समय ये अभ्यास करते हैं कि मैं इस शरीर को चलाने वाली, इन कर्मेंद्रियों की मालिक, इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। जब आत्मिक स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं तो सब संकल्पों का विस्तार अपने आप समेट जाता है, समेट लेते हैं। योग का पहला आधार है मन और बुद्धि की एकाग्रता। अगर हमारा मन और बुद्धि एकाग्र नहीं है, बैठे हैं इधर के संकल्प उधर के संकल्प, कई बार ज्ञान के ही संकल्प बहुत विस्तार से चलते रहते हैं, उसमें भी आत्मा आनंदित होती है, लेकिन जो याद की योग की गहराई है, यथार्थ स्वरूप है उसका, जिसके अंदर एक रस एक टिक एकाग्र स्थिति है, हलचल नहीं है, अनुभव है, स्वयं की स्मृति है, स्वरूप पर भी ध्यान है और बाबा पर भी पूरा ध्यान है, बाबा जो है जैसा है उसको यथार्थ पहचान कर उसके साथ स्नेह संबंध स्थापित करके रखना, उनकी समीपता का अनुभव करना, उनके संग के रंग में रंग जाना, वास्तव में यही योग की गहराई है। आप सभी जब योग का अभ्यास करते हैं तो अभ्यास के अंदर हर एक यही चिंतन करता है कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं एक दिव्य आत्मा हूं, इस भ्रकुटी आसन पर मैं विराजमान हूं। जो इस शरीर का खिंचाव है, आकर्षण है, इससे डिटैच होते हैं, बहुत समय से इसमें आत्मा फंसी हुई है, इस पिंजरे के अंदर, इतनी जल्दी नहीं है इसको भूलना, सहज नहीं है, अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास करते करते जब हम अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित होते हैं, सिर्फ स्वचिंतन और स्वस्वरूप की स्मृति है, आत्मा के जो निजी गुण हैं उनका अनुभव है। जब उन अनुभवों में हम खो जाते हैं, समा जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, तो अनुभव होने लगता है कि बाबा की वो शक्तियां, वो लाइट, वो माइट मेरे ऊपर आ रही है। और सबसे वंडरफुल बात यह है कि इस योग के अंदर किसी मीडियम की, कोई बीच में बिचौलिए की जरूरत नहीं है। हर एक आत्मा को डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट संबंध है, डायरेक्ट पहचान है। जिसका जितना बाबा से दिल का सच्चा प्यार है, जिसने उसने यथार्थ रूप से पहचाना है बाबा को, उसको बहुत सहज रीति से बाबा के साथ का, उनकी शक्तियों का, उनके स्नेह का बहुत अच्छा अनुभव होता है। और उस अनुभव में जो आत्मा खोई हुई रहती है वो योग की गहराई में चली जाती है, बाह्य मुक्ता उसे समाप्त हो जाती है। ये जो बाह्य रस हैं, जो दैहिक रस हैं, इंद्रिय रस हैं, देखने का, सुनने का, बोलने का, खाने का, बहुत सारे रस जिनके अंदर आत्मा लिप्त है इस समय, इसको ही हम देह अभिमान कहते हैं। जब आत्मा देह अभिमान के अंदर, देह की कर्मेंद्रियों के रसों के अंदर लिप्त हो जाती है, तो उस योग की गहराई का अनुभव नहीं कर पाती। भले हमको ज्ञान मिला, कुछ समय उस स्मृति में रहते हैं, लेकिन एक आत्मा खो जाए प्यार में, समा जाए, और सर्व आकर्षण, सर्व प्रकार की खिंचाव समाप्त हो जाए, एक लौ में एक रस लीन स्थिति का अनुभव करना, खो जाना, जैसे कोई किसी के प्यार में खो जाए, शुद्ध बुद्ध भूल जाए, जो दैहिक आकर्षण की खिंचाव है वो सब समाप्त हो जाते हैं। अब जब योग अभ्यास करते हैं तो मैं समझता हूं जरूर संकल्प शक्ति पर ध्यान जाता होगा। संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है, आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति संकल्प शक्ति है। लेकिन जब हम योग अभ्यास करते हैं तो इस पर अगर हमारा ध्यान नहीं गया तो ये कहीं ना कहीं भटकता है इधर उधर। उसका नाम ही है गति, चलना, और रुकता नहीं है। अटेंशन देंगे कुछ समय एकाग्रचित होकर के कि तुम किधर जा रहे हो, क्या सोच रहे हो, कौन से विचार चल रहे हैं, तो धीरे धीरे उन संकल्पों को हम एकाग्र कर लेंगे, स्थिर हो जाएंगे। वो संकल्प जो बह रहे हैं वो रुक जाएंगे। जिन बातों से अब मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, फिर भी वो संकल्प चलते हैं। कुछ संस्कार ऐसे हैं, उन संस्कारों के आधार से संकल्पों की उत्पत्ति होती है। कुछ हमारे कर्म ऐसे हुए हैं जिन कर्मों की स्मृति आते वो संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे संग हमने किए हैं जिसके रंग में हम रंगे हैं, तो संग के प्रभाव के कारण उस प्रकार के संकल्प चलते हैं। कुछ ऐसा खान पान है तो उसके कारण भी संकल्पों पर प्रभाव पड़ता है। चेक करो, आत्मा की मन जीत स्थिति है। जब चाहे, बाबा कहता है जितना समय चाहो, जिस स्वरूप में स्थित होना चाहो उतना समय उसी स्वरूप में स्थित हो जाओ। मान लो आप चाहते हो कि हम 10 मिनट के लिए उस बीज रूप स्थिति में बैठ जाएं, जो मेरा निज स्वरूप है, जो परम धाम की ओरिजिनल स्थिति है, उस स्थिति में हम आत्मा स्थित हो जाए। सब जानते हो परम धाम के अंदर कोई संबंध नहीं है, कोई संकल्पों का विस्तार नहीं है, कोई हलचल नहीं है, वो स्वीट साइलेंस की स्थिति है। एक शब्द है डेड साइलेंस, डेड मरी हुई शांति। एक है स्वीट साइलेंस, शांति भी बहुत प्रकार की है। एक शमशान वाली भी होती है, एक मंदिरों में जाते हैं वहां की भी होती है, एक जंगल में जाते हैं वहां की भी अलग होती है। लेकिन इस योग अभ्यास के अंदर हम आत्मा का निज स्वरूप जो शांत है, स्थिर है, हलचल से परे है, उस स्वरूप का अनुभव करते हैं। और उस स्वरूप में स्थित होकर के फिर उसी स्वरूप में हम बाबा को देखते हैं, अनुभव करते हैं। बहुत समीप है, बहुत दूर नहीं है। समीपता का, साथ का, उसके संग के रंग का बहुत सुंदर अनुभव होता है। योग के लिए केवल तीन चीजों पर ध्यान देना। पहली है बहुत अच्छी एकाग्रता, मन और बुद्धि की एकाग्रता, संकल्पों का बहाव रुक जाए। अपने स्वरूप के संकल्प करो, भले मैं जो हूं जैसा हूं उस स्वरूप में स्थित हो जाओ, फिर बाबा जो है जैसा है उसके स्वरूप को भी देखो और उसमें स्थित हो जाओ। तो कहता मैं एक लाइट हूं, एक माइट हूं। ये जो लाल लाइट शिव बाबा का दिखाते हैं ना, उसके बीच में चमकता हुआ मैं दिव्य सितारा, जो व्हाइट चमक रहा है, है रूप में बिंदु लेकिन सर्व गुणों का सिंधु है, सर्व गुण समाये हुए हैं। तो जितना हम एकाग्र चित्त हो जाते हैं, हलचल समाप्त हो जाती है, उतना बाबा के सर्व शक्तियों का अनुभव होने लगता है। ये देह, ये संबंध, ये दुनिया सब भूल जाती है। इसको कहते हैं डिटैच स्थिति, कोई भी अटैच नहीं, कहीं भी अटैच नहीं, जैसे सब किनारे छोड़े हुए आत्मा ने, बिल्कुल एक बाबा, दूसरा ना कोई, मैं और मेरा बाबा। ये है योग की गहराई। दूसरा आता है समर्पणता। जब तक किसी ने अपने आप को समर्पण नहीं किया, समर्पण किसको करना है, जो मैं और मेरा, जहां जहां भी हम सब ने कहीं न कहीं कोई हिसाब किताब के संबंध बनाए हैं, कोई कार्य किए हैं, कोई अच्छे सेवाएं की हैं, कुछ मैं आता है अहम। जब तक आत्मा अहंकार शून्य नहीं हुई है, अहंकार शून्य, जरा भी अहंकार ना हो। ब्रह्मा बाबा को आपने देखा सुना, आत्मा एकदम अहंकार शून्य थी, कभी अपनी महिमा स्वीकार नहीं की, कभी कोई वस्तुएं स्वीकार नहीं की। बाबा का एक रथ बन करके रहा कि बाबा सब कराने वाला वो है, मैं कुछ नहीं करता हूं। बाबा के महावाक्यों से बाबा का एक निरहंकारीपन झलकता है। बच्चे फूल नहीं लाना, किसको फूल चाहते हो, किसका फोटो खींचते हो, क्यों इसके पीछे लगे हो, ये तो विनाशी है, तो देहधारी है, इसे कुछ मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल अहंकार को जैसे गला दिया, समर्पण कर दिया, देवान को समर्पित कर दिया। कभी भी मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मेरी सेवाएं, मेरा एरिया, मेरा जो बहुत विस्तार हो गया ना आजकल, बाबा ने उस सब को एकदम समा लिया, समेट लिया। हम सभी भी चेक करें, जो योग की गहराई का अनुभव करते हैं, जो योगी तो आत्माएं हैं, वो बिल्कुल अहंकार शून्य, एकदम नम्र चित्त, निर्माण चित्त, निरहंकारी स्थिति में रहती हैं। कोई चीज उनके मन को डगमग नहीं करती। देने वाला दाता हमको सब कुछ दे रहा है, सब कुछ दिया है, अपार दिया, थाह दिया है, एक से लेना है और सबको देना है, लेना एक से है और सबको देना है, ध्यान रखना। अगर किसी देहधारी से कुछ लेने की इच्छा रखी तो जहां देहधारी से लेने की इच्छा आ गई वहां पर कामनाएं हैं, और वो कामनाएं परमात्म रस का अनुभव नहीं करने देती। व्यक्तियों के प्रभाव में, उसके दबाव में, उसके लगाव में, उससे झुकाव में आ जाते हैं। इसको समर्पण करना है। योग का अगर गहन अनुभव करना है तो इस बॉडी कॉन्शियस को समर्पित करना है, इस मैंपन को समर्पित करना है। मैं तो बाबा आपका बच्चा, एकदम न्यारा, निर्लिप्त, निरहंकारी एक आत्मा हूं। और तीसरी बात आती है स्थिति का संतुलन, एक रस। अभी अभी महिमा हुई, बड़ी खुशी, बड़ा नशा, बड़ा अच्छा लगा। अभी अभी कोई ने हमारी बात कट कर दी, कोई ने कुछ सम्मान नहीं दिया, इज्जत नहीं मिली, कुछ भी हुआ, एकदम पारा एकदम डाउन हो गया, खुशी गायब हो गई। क्या योग करेंगे? जो योग की गहराई का अनुभव कर लेते, जो रस में समाना जानते हैं, उनकी समान स्थिति बन जाती है। निंदा हो रही है, महिमा हो रही है, दुख है, सुख है, जय है, पराजय है, कहते योगी वो है जो निंदा, स्तुति, मान, हानि, दुख, सुख, जय, पराजय सब में समान स्थिति में रहता है, एक रस स्थिति में रहता है। चेक करना ये तीनों बातें हैं। कितना स्थिति बिल्कुल बैलेंस में चलती है, तुरंत अधैर्य हो गए, कोई ने बात कह दी मेरे मन के मुताबिक अच्छी नहीं लगी, डिस्टर्ब हो गए, उत्तेजित हो गए, मुख से भी कुवचन बोल दिया, योगी जीवन भूल गई, ब्राह्मण जीवन भूल गई, गुस्सा आ गया, चलो ठीक है, थोड़ा ध्यान गया कि नहीं मुझे नहीं बोलना है, फिर भी चेहरे पर आ गया, अंदर आ गया, एकदम मन को हिला दिया अंदर से, क्या स्थिति। जो आत्मा एकदम धैर्यवत है, धैर्यवत, बहुत सरल, बहुत नम्रचित, उसके अंदर सर्व गुण क्वालिटीज दिखाई देंगी, योगी है तो, योग के गहरे अनुभव किए हैं। ऊपर ऊपर से योग करने वाले ठीक है, कर रहे हैं, अभी देखो तो बाबा कई बार कहता ना सोडा वाटर, अभी देखो तो एकदम पारा चढ़ा हुआ है, नशा है, खुशी है, सेवाओं का उमंग है, उत्साह है, खुद भी आगे बढ़ रहे हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ा रहे हैं, और अभी अभी नहीं कोई अपने मन के अनुसार हो रहा है, मन रूठ गया, मन मुटाव हो गया, खुशी गायब हो गई, उमंग उत्साह खत्म हो गया, ठीक है बाबा तो अच्छा है, लेकिन परिवार के साथ चलना बड़ा मेहनत है। चेक करना क्या इन सब बातों में हमारी स्थिति एकदम समतल, एकदम संतुलन में रहती है, मान मिल रहा है तो अच्छा, नहीं मिल रहा तो नहीं, ठीक है। मान हो या अपमान हो, कोई चांस मिले या न मिले, चेक करो क्या स्थिति रहती है। एक को मिल रहा है, दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है, एक आगे बढ़ रहा है, दूसरा समझ रहा है इसको इतना चढ़ा रहे हैं, इतना बढ़ा रहे हैं, तो डिस्टर्ब हो रहे हैं अंदर अंदर। वास्तव में ये योगी जीवन नहीं है, ये योगी आत्मा ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा सब बातों से मुक्त हो जाती है। समझने का प्रयास करो, अगर यथार्थ सहज राजयोगी जीवन है, जो कल तो बाबा ने बड़े रमणीकता से कह दिया कि इसमें तो राजयोग है, राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनते हैं, दोनों चीजें इसमें एक में समाई हुई है। लेकिन ये लक्ष्य हम न रखें कि हम भी प्रजा बन जाएं तो ठीक है। संयम युग पर जिस आत्मा ने राज्य पद प्राप्त कर लिया, भविष्य पद को छोड़ो, संगम पर मेरा राज्य पद, संगम पर मेरा स्वशासन है, मेरा मन मेरा कहना मानता है। कभी आप लोगों ने राजदरबार लगाई है? बाबा कई बार कहता है बच्चे दरबार लगाओ, सुना है ना बाबा की? आप लोग समझ तो रहे हो ना सब बातें, समझ रहे हैं ना माता हैं, हिंदी समझ रहे हैं, ट्रांसलेशन भी मिल रही है। राजदरबार लगाई है? हाथ उठाओ जिसने लगाई है। जानते हो राजदरबार के विषय में? ब्रह्मा बाबा ने शुरू शुरू में, क्योंकि बाबा का राजाओं से बहुत संबंध था साकार में लौकिक में, देखता था राजा आता था, महाराजा बैठता था सीट पर, बहुत अदब के साथ सारी प्रजा, सारे उनके जो कर्मचारी, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रजा के वजीर सब सामने बैठते थे अलग अलग गद्दी पर, और वो राजा उनसे एक एक से हालचाल पूछता था, तुम्हारे क्षेत्र का, जिस सेवाओं में तुम निमित्त हो, तुम्हारा क्षेत्र ठीक है, सेवाएं ठीक हैं, वहां की प्रजा संतुष्ट है, कोई कमी तो नहीं है। प्राचीन काल, अभी तो राजा ही खत्म हो गई, लेकिन बाबा साकार में जब थे तो नेपाल के राजा के साथ, उदयपुर राजा के साथ, बड़ौदा के राजा के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। ये बिजनेस के कारण जवाहरात बाबा सप्लाई करते थे और राजाओं को बहुत जवाहरात लेनी होती थी, खरीदते थे, तो बाबा घरों में जाते थे, सबसे मिलते थे, और कभी कभी उनकी दरबार में भी जाते थे, देखते थे कैसे दरबार लगती है। तो जब से बाबा ने प्रवेश किया तो बाबा ने भी दरबार लगाए। प्रवेश होने के पहले बाबा दरबार लगाए। बाबा की प्रवेशता शिव परमात्मा की 36 में हुई, 1936, और बाबा की जो डायरी है वो 1930 की लिखी हुई हाथ की मिली, जिसमें बाबा अपनी दरबार लगा रहा है, मन बुद्धि संस्कार ये पांच ज्ञान इंद्रियां आठों को सामने बिठाया हुआ है, एक एक सामने बैठा है, मैं आत्मा राजा बैठा हूं, मैं आत्मा राजा अपने मन से पूछ रहा हूं, हे मन मंत्री तुम मेरा कहना मानता है? जब मैं परमात्मा का ध्यान करता हूं तो तुम क्यों भटकता है, क्या तुमको चाहिए, क्यों इधर उधर जाता है? ऐसे एक एक से, मन से, बुद्धि से, आंखों से, कानों से, नाक से, हाथ से, ये जो ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय हैं, बाबा ने बहुत एकाग्र चित्त होकर के एक एक बात से बात किया, एक एक कर्मचारी से, मन बुद्धि से बात किया, और बात करते करते उनको अपना बना लिया, कंट्रोल में ले आया। कोई इंद्रिय धोखा नहीं दे सकता। अगर आंख धोखा दे रही है, आज हम कोई चीज देखते हैं, खाने की देखते हैं, रूप रंग देखते हैं, फट से प्रभावित हो जाते हैं, बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर है। दो कर्म इंद्रियां आत्मा को बहुत धोखा देती हैं। एक बाबा कहता आंखों पर ध्यान दो और दूसरा जबान पर ध्यान दो। अगर योगी आत्मा इन दो चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रही है, कंट्रोल में नहीं रखती, योग क्या करेगी? कभी आंखें धोखा दे रही, कोई अच्छी चीज देखी, अच्छा रूप रंग देखा, किसी के ऊपर आकर्षित हो गए, किसी चीजों के आकर्षण में आ गए, कोई चीज है अच्छी लगती है ज्यादा खा लिया, या जबान दो काम करती है एक साथ, कभी बोल दिया संबंध बिगड़ गए, खा लिया स्वास्थ्य बिगड़ गया। संबंध और स्वास्थ्य दोनों का आधार क्या है? यही जबान ही है ना। अगर इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाया तो योगी कैसा, राजा कैसा? और ये राजा अगर नहीं बना तो भविष्य राज्य तो बहुत दूर की बात है। हम सब राजयोगी है ना, तो राजयोगी कभी अपने से पूछते हो कि हे कर्म इंद्रियां, हे आंख, हे मुख, हे कान, तो मुझे धोखा क्यों देता है, कहां जाता है, क्यों? मैं तो मालिक हूं ना। अगर मालिक बन करके अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने संस्कारों को कंट्रोल में ले आओ तो ये तो चैतन्य शक्तियां हैं और ये आत्मा की स्थूल सूक्ष्म शक्तियां। जड़ भी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, कोई धोखा नहीं देंगे। और मालिक बन गए तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा, एक सेकंड लगता है उसको बाबा के पास जाने में, मेहनत नहीं है। मेहनत उनको लगती है जो किसी न किसी कर्म इंद्रिय के अधीन है, गुलाम है, जिनको धोखा मिल रहा है। इतना सरल सहज योग तो और कोई सिखा ही नहीं सकता जैसे बाबा ने सिखाया। बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, मेरे पास आ जाओ, सेकंड में आ जाओ। लेकिन बैठते हैं, मेरा योग नहीं लगता है, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, इधर के विचार उधर के विचार, युद्ध कर रहे हैं। तो बाबा कहता है, अरे योगी हो या योद्धे हो, युद्ध करते करते शरीर छूट जाएगा तो कहां जाओगे? ध्यान दो, युद्ध करने का समय पूरा हो गया। बहुत स्थिर एकाग्र होकर के बैठ जाओ, बाबा को सामने अनुभव करो और बाबा के प्यार में खो जाओ। बाबा ने इतनी प्राप्तियां कराई हैं, इतना सब कुछ दिया है, गुणगान करो और गाते गाते सो समा जाओ। आपको अनुभव होने लगेगा, वो सब शक्तियां मेरे जीवन में आ गई, मेरे दृष्टि से, मेरे बोल से, मेरे रुहाब से, चलने फिरने से भी दिखाई देता है। ये साधारण आत्माएं नहीं है, योगी हैं। इनके पांव धरनी पर नहीं है, इस धरनी की आकर्षण से ऊपर उठ गए हैं। चेक करना, बाबा के बच्चे तो बन गए लेकिन धरनी को छोड़ा या नहीं? अगर धरनी कोई नहीं छोड़ा है, देह ही धरनी खींच रही है, संबंधों की धरनी खींच रही है, ये धरनी अलग है, इस पर तो चलना ही है, लेकिन ये जो दैहिक है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, आत्मा उससे न्यारी उपराम बिल्कुल निर्लिप्त हो जाए, ऐसा योग में अनुभव करो। और जब योग सहज है, योग लगा हुआ है, योगी तू आत्माएं हैं, तो जो पिछले हिसाब किताब है किसी भी रीति से बने हैं। हम लोगों ने 84 जन्म, भले की जन्म हम आत्म अभिमानी रहे, कर्म अकर्म हुए इसलिए भी कर्म नहीं बने, पाप नहीं हुए, लेकिन जब बॉडी कॉन्शियस में आए तो पाप भी इतने अधिक किए, देहमान में आकर के फुल देहमान में आ गए, और द्वापर से लेकर के अभी तक 63 जन्मों में पाप पर पाप करते आए। आत्मा कई हिसाब किताब बना करके एकदम बोझिल हो गई। अब बाबा कहता है, बच्चे इसको भी चुक तो करो, इसको अगर चुक तो नहीं करोगे तो खींचेगा, इसके लिए योग के साथ प्रयोग। योगी तो हो, बन गए, एकाग्रचित हो गए, समर्पण बुद्धि हो गए, एक रस स्थिति में स्थित हो गए, एकदम बाबा के प्यार में खो गए, सागर की तहले में गहरे में चले गए, अनुभव होने लगे, अच्छे अच्छे रतन मिलने लगे। लेकिन बीच बीच में जो हिसाब किताब सामने आते हैं उसके लिए प्रयोग करो, साथ साथ इस कलयुगी तमोगुणी वायुमंडल में जो प्रकृति दुख दे रही है, परेशान कर रही है, पांचों तत्व, और आजकल हम सब के साथी आत्माएं अलौकिक रीति से सब हमारे भाई, वो भी कितना विकारों में लिप्त हैं, दुखी हैं, उन पर भी योग का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सब सहज योगी जीवन, योग स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के, अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित होकर के बाबा की लाइट को लेना, प्रयोग करने की विधि। कई लोग सोचते हैं मैं योगदान देता हूं, जहां मैं आ जाता है ना वहां योगी टूट जाता है, मुझे योगदान क्या देना है, बाबा की शक्तियां जो मेरे अंदर आई आ रही हैं वही दूसरे तक जाएंगी। तो योगदान के लिए सबसे बहुत अच्छी स्थिति है, जैसे आपने देखा है हमारे सोलार एनर्जी कैसे पैदा हो रही है, सूर्य की शक्तियां तो सब तरफ एक जैसी हैं, लेकिन जहां पर एक स्पेशल कांच लगा दिए गए और वो स्पेशल कांच सूर्य की तरफ उनका मुख है, कांच साफ है, स्वच्छ है, सूर्य की किरण उसके ऊपर पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई, उसकी कई गुना शक्ति बढ़ गई, और उसके सामने से अगर कोई चीज क्रॉस हो रही है, पानी का पाइप जा रहा है, तो स्टीम बन गया, बैटरी चार्ज कर दिया, सोलार एनर्जी जैसे पैदा होती है। योग और प्रयोग कनेक्शन है, सूर्य के साथ कनेक्शन जुटा, और कनेक्शन जुटते ही जो शक्ति आई वो प्रयोग होने लगी, प्रैक्टिकल। बैटरी चार्ज किया, बैटरी चार्ज करके फिर चाहे आप बल्ब जलाओ, चाहे पानी मोटर चलाओ, चाहे भोजन बनाओ, कई चीजों में यूज करो, चार्ज किया बैटरी को। ऐसे ही पहले हमारी बैटरी चार्ज होनी चाहिए, प्रयोग करने के पहले बैटरी चार्ज है। अगर बैटरी डल है, शक्ति नहीं है, बैठे रहो योग में, शुभ संकल्प करते रहो, लेकिन जाएगी नहीं सकती, वहीं तक वहीं सीमित रह जाएगी। एक बल्ब है टिमटिम टिमटिम करता है, एक बल्ब है एकदम बहुत तेज 1000 पावर वाला है। अब 1000 पावर वाला लाइट जलता है तो कहां तक जाता है, दूर दूर तक उसकी करंट जाती है, लाइट जाती है। बल्ब एक ही जगह पर है लेकिन रोशनी भी जाती है, और कई जगह पर अगर किरणें जाती हैं तो गर्मी भी आती है, माइट भी आती है, शक्ति भी आती है। ऐसे ही बाबा की शक्तियों को मन पर लेकर के जिधर चाहिए, पहले तो हम सबको प्रयोग करना चाहिए अपने निजी संस्कारों पर। हर एक के अंदर कुछ न कुछ छिपे हुए संस्कार हैं, पता नहीं चलता कई बार, क्योंकि अच्छे संग में हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, अच्छे परिवार के बीच में हैं, मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म है। वासनाओं के संस्कार, तृष्णाओं के, कामनाओं के, इच्छाओं के बहुत सारे संस्कार हैं। जब समय आता है, जब ऐसी कोई घटना होती है, परिस्थिति आती है, तो वो संस्कार जागृत हो जाते हैं। कहते चाहता तो नहीं था लेकिन मुझे गुस्सा आ गया, चाहता नहीं था लेकिन मेरे से हो गया। हो गया कैसे हो गया, कोई संस्कार छिपा हुआ था ना, वो बाहर आ गया, कोई ने कुछ कह दिया, कुछ हुआ, एकांत मिली, ऐसा वातावरण मिला, ऐसा कोई सामने वाला व्यक्ति मिला, फट से भूत भूत को मिल गया, आग लग गई। संस्कार छिपा हुआ है, जलाया नहीं है, समाप्त नहीं किया। योग अग्नि के अंदर जब हम एकाग्र चित्त हो जाते हैं तो बाबा के सामने उन संस्कारों को मर्ज करना चाहिए। बाबा ये संस्कार अभी तक मेरा है, इसको जलाना है मुझे, संकल्प तो करो कम से कम। अभी तक मेरे अंदर वासनाएं हैं, काम विकार बहुत तंग करता है, कोई स्वप्न में तंग करता है, कभी दृष्टि वृत्ति चंचल हो जाती है, कभी ऐसे ऐसे विकारी संकल्प आ जाते हैं, आत्मा को हैरान कर देते, परेशान कर देते। ऊपर से तो पवित्र और योगी जी रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर युद्ध चल रही है, बहुत परेशान करते कईयों को। कई कुमार तो ऐसे ऐसे सुनाते हैं आकर के, ऐसा होता है, ऐसा होता है, डरो नहीं। बाबा कहता है डरो नहीं, मुझे भी आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है एकदम अलबेले हो जाओ, प्रयोग करो योग का, बैठ जाओ एकांत में जाकर के, बाबा की याद में खो जाओ बाबा में, और वो शक्तियां पवित्रता की लो, आप पवित्रता के सागर, मैं आत्मा आपकी पवित्र स्वरूप, ये अपवित्र संस्कार एकदम गल जाएं, समाप्त हो जाएं। मैं तो आप जैसी एकदम योर प्योर आत्मा बन करके आपके पास आऊं, संकल्प करो। जो ऐसे संस्कार हैं, काम के हैं, क्रोध के हैं, लोभ वृत्तियों के हैं, मोह ममता के हैं, अहंकार के हैं, ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा, बहुत सारे ऐसे विकारी पुराने, जिसको आज बाबा ने कहा अल्पकाल के संस्कार, अनादि संस्कार, कितने अच्छे रायल संस्कार थे, दिव्य संस्कार थे, सुख देने वाले संस्कार थे, लेकिन ये जो मध्यकालीन विकारी देवमान जनित संस्कार हैं, वो कितना दुख दे रहे हैं इंसान को, परेशान कर रहे हैं। प्रयोग करो, अगर 10 साल 15 साल ज्ञान में चलने के बाद वो संस्कार नहीं खत्म हुआ है, माना हमारा अटेंशन नहीं है, हम सोच रहे हैं सब में तो है, हो जाएगा। और बाबा कहता बच्चे अगर एक भी कोई कमजोर संस्कार आपने छिपा के रखा है तो वही संस्कार बड़े रूप में आकर के लास्ट में पेपर बन के आएगा, एक भी कोई छिपा हुआ होगा। कईयों में सब प्रकार की विशेषताएं होती हैं, 99% विशेषताएं होती, लेकिन एक कमी, एक संस्कार उस आत्मा को ज्ञान से, यज्ञ से बाहर लेके चला जाता है। ध्यान देना, सहज बात नहीं है। सोच करके चल जाता है, अभी तो कहां संपूर्ण बन गए हैं, कौन बन गया है, इस प्रकार के संकल्पों के कारण वो संस्कार छिपा हुआ रह जाता है। केवल हमें अपने संस्कारों को ही नहीं जलाना है, समाप्त करना है, हमें तो विश्व की आत्माओं को भी मदद करनी है, सारी सृष्टि की आत्माओं के दुख हरने हैं, सारी सृष्टि को पावन बनाना है, पांच तत्वों को सत्व प्रधान बनाना है, बहुत बड़ी सेवा है। केवल हम अपने ही संस्कारों से लड़ते रहेंगे क्या, कब तक? विचार करो, संस्कारों पर प्रयोग करो। शरीर पर कोई बीमारी आती है, ज्यादा इधर उधर, बहुत ज्यादा टक्कर में, बहुत ज्यादा भटको नहीं डॉक्टरों के चक्कर में, ठीक है बाबा अपने आप किसी को अच्छे डॉक्टर को निमित्त बनाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसी दवाई मिल जाएगी, लेकिन योग के प्रयोग करो, एकाग्र चित्त होकर के बाबा की सर्व गुणों की शक्तियां एकाग्र करो मन के ऊपर, और जहां पर ऐसा कोई रोग है, जहां पर ऐसे दर्द है, प्रयोग करो, बैठ जाओ शांति, दर्द बार बार न खींचे आत्मा को। दादी जानकी बड़ा अच्छा एक शब्द बोलती है, कोई कहता दादी आपको दर्द है या कोई तकलीफ है, कहती दर्द तो है लेकिन दुख नहीं है, दर्द है लेकिन दुख नहीं है। प्रयोग करो, दर्द भी अपने आप भूल जाएगा, बैठ जाओ एकाग्र चित्त होकर के, मन को बार बार अपनी तरफ नहीं खींचे शरीर, तो अभ्यास की जरूरत है, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी कुछ होगा ना शरीर के अंदर, योग नहीं लगेगा, बार बार वही बुद्धि जाएगी, वही मन जाएगा। लेकिन एकाग्रता का अभ्यास है, बाबा के पास पहुंचने का अभ्यास है, तो ये सब भूल जाएगा। प्रयोग करो, वो शक्तियां आ रही हैं और वो शक्तियां शरीर को निरोगी बना रही हैं, बहुत शुभ भावना से, श्रेष्ठ संकल्प से, ये सब नेगेटिविटी खत्म हो रही है, सब रोग समाप्त हो रहे हैं। संस्कारों पर किया, शरीर पर किया, संबंधों में रुकावट लोग डाल रहे हैं, कई खान पान में शुद्धि नहीं आने देते, कोई पवित्र जीवन जीने नहीं देते, कोई क्लास में आने नहीं देते, कहीं कोई रुकावट, कहीं कोई विघ्न। विधि पूर्वक 21 दिन तो कम से कम कर लो, विधि पूर्वक करो, लेकिन आधा घंटा ही बैठो, ज्यादा समय नहीं, लेकिन एकाग्र चित्त एक ही स्थान पर बैठ करके एक ही शुभ संकल्प से कि ये विघ्न खत्म होना ही है, बाबा की शक्तियां लो, और बार बार विघ्न को याद नहीं करो, बाबा को याद करो, बाबा अपने आप वो विघ्न खत्म कर देगा। एक बार बाबा के आगे सुना दिया, तक दिया, बस। संबंधों में कोई भी प्रकार के विघ्न है, आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में कोई विघ्न है, बाबा की याद में आधा घंटा तपस्या करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत पॉजिटिव संकल्प, सकारात्मक संकल्प, शुभ संकल्प योग के प्रयोग का पहला आधार है। जैसे लाइट के प्रयोग, साइंस के प्रयोग लाइट के बिना नहीं होते। आज हम माइक के द्वारा आप तक आवाज जो पहुंच रही है, इसमें लाइट है बीच में, अगर लाइट हट जाए तो वायर है, माइक है, साधन है, सब है, लेकिन आवाज नहीं जा रही है। ऐसे जितना हम लाइट हैं, हल्के हैं और लाइट स्वरूप स्थिति में स्थित है, बिल्कुल लाइट होकर के, कोई बोझ नहीं, कोई व्यर्थ चिंतन नहीं, वो लाइट अपना काम करेगी। लाइट के द्वारा आप जो संकल्प करोगे पहुंचेगा। तो संबंधों पर प्रयोग करो, संस्कारों पर प्रयोग करो, शरीर की बीमारियों पर प्रयोग करो, समाज के अंदर जहां से भी रुकावटें हैं, परिवार में, उन पर प्रयोग करो, सब हट जाएंगे, सब विघ्न हट जाएंगे, लेकिन विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित होकर के प्रयोग करना, स्वार्थ से नहीं, हद की कामनाओं को लेकर के नहीं। बाबा ये सब बच्चे आपके बिल्कुल सहयोगी बने, बहुत अच्छे आपके वारिस बने, ये आपसे अपना अधिकार ले ले, में मुझे देंगे मदद, ऐसा नहीं, आपसे अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले लें, ऐसी शुभ भावना रख करके, बेहद की भावना रख करके योग के प्रयोग करो, मन को एकाग्र करके बैठ जाओ। बाबा की किरणें ऐसे आ रही हैं और इस तरफ से भ्रकुटी से निकल करके उस आत्मा तक जा रही हैं। कभी वायुमंडल में फैलाओ मनसा शक्तियां, प्रकृति के पांचों तत्व तो सामने खड़े हैं जो बहुत दुखदायी बन गए हैं, वो सब शांत होकर के अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। इनको पवित्रता की सकाश जा रही है, इनको शांति की सकाश जा रही है, ये सब सतो प्रधान बन रहे हैं, ये अपनी सब तमोगुणी तमोगुणता को त्याग रहे हैं। प्रकृति पर प्रयोग करो, अगर कोई खेतीबाड़ी है खेतीबाड़ी पर, अपने खेत पर भी योग के प्रयोग करो। बहुत एकाग्रचित होकर के बाबा की शक्तियां ऐसे आई, पेड़ पौधे वनस्पति जो है बहुत समर्थ बहुत शक्तिशाली बिल्कुल निरोगी बन रही है। यहाँ तो ऐसे ऐसे प्रयोग करवाए, एक भाई ने प्रयोग किया पपीता का, एक झाड़ लगा करके उसके सामने रोज 5 मिनट खड़ा होता था, पानी देता था और खड़ा होकर कहता था, पपीता इस झाड़ से तो हमें 108 फल चाहिए और एक बड़े बड़े पपीते होने चाहिए, ये बाबा के यज्ञ में जाएंगे, भोग लगेगा, इतने ब्राह्मण आत्माएं खाएंगे। बहुत शुभ संकल्प से उस खेत पर प्रयोग करना शुरू कर दिया, सचमुच वो पपीता ऐसा निकलने लगा। हमारे संकल्प शक्ति क्या नहीं कर सकती, लेकिन बहुत स्थिर एकाग्र बहुत शुभ भावनाओं से संपन्न शक्ति चाहिए। अभी अभी अच्छे संकल्प, अभी ये कैसे होगा, ये तो सब ऐसे ही काल्पनिक लगता है, थोड़ा सा उसमें मिक्स कर दिया कमजोर संकल्प, तो जो रिजल्ट निकलनी चाहिए वो नहीं निकलती। लेकिन यदि विधि यथार्थ है तो बाबा कहता है, बच्चे सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये रिद्धि सिद्धि नहीं है, ये विधि से सिद्धि है। अगर विधि यथार्थ हो तो सिद्धि मिलनी ही है, और बाबा के बच्चों को नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी। संगम युग पर जिन आत्माओं ने पवित्र जीवन जी रहे हैं, जिनके बहुत सकारात्मक चिंतन है, बहुत अच्छे विचारों में रमण करते हैं, सदा शुभ भावनाओं से ओतप्रोत हैं, शुभ चिंतक बनकर के रह रहे हैं, उनके हर संकल्प सिद्ध होने ही हैं। जो संकल्प करोगे हो जाएगा। लेकिन बाबा कहता है यथार्थ संकल्प करना, अगर गलत संकल्प से दोगे तो श्रापित हो जाओगे आप भी और दूसरे भी। संकल्पों की क्वालिटी को डाउन नहीं करना, किसी के लिए कोई ऐसा व्यर्थ संकल्प करके योग नहीं करना, देखना ये रास्ते से हट जाए, रास्ते से हटाने के लिए योग नहीं करना। जिस बात में उस आत्मा का भला है, जिस बात में उस आत्मा का कल्याण है, बाबा वो अपने आप करेगा, उसकी चिंता मुझे नहीं करनी है। कल्याणकारी बाबा के हम सब बच्चे हैं, बहुत कल्याण का शुभ संकल्प रखो, हर आत्मा का भला हो, हर आत्मा का कल्याण हो, ये सब आत्माएं अपना अधिकार मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा ले लें। बहुत शुभ चिंतक वृत्ति रखो, और शुभ चिंतक का आधार है स्वचिंतन, जो जितना स्वचिंतन में रहता है वो शुभ चिंतक बन जाता है, और शुभ चिंतक की भावनाएं अपने आप चारों तरफ फैलती हैं। लेकिन वो भावनाओं को फैलाने के लिए बहुत अच्छी एकाग्रता चाहिए, हिलना नहीं। अगर डॉक्टर कोई ऑपरेशन करते करते ऐसे हाथ हिल गया तो बेचारे का जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत स्थिर और एकाग्र होकर के अपने आत्मिक स्वरूप में बैठो, बाबा की शक्तियों को ग्रहण करो, और वो बाबा की शक्तियां अपना काम करना शुरू कर दे। देखो हार्ट के पेशेंट आते हैं, कितने लोगों की आर्टरी खुल गई, साइंस मानने के लिए तैयार नहीं है इस बात को, अभी मानने लगे धीरे धीरे। योग, बंद आर्टरीज क्लस्टर जमा हुआ है और आप कहते हो योग से खुल जाएगा, चमत्कार है क्या, और खुल गया। सिर्फ डाइटिंग का ध्यान रखा है, खाने पीने का, एक्सरसाइज का और योग का, तीन चीजें हैं। हमारे जितने सकारात्मक विचार बनते जाते हैं, पॉजिटिव चिंतन चलता है, ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल निर्दोष भाव से आत्मा बैठी है, बहुत सरल चित्त होकर के स्थिर होकर के बैठी है, वो बाबा की ऐसे सब शक्तियां उसके ऊपर आती जा रही हैं, और जो संकल्प उसके हैं वो कार्य कर रहे हैं, हो रहे हैं। प्रयोग करो, सिर्फ योग नहीं करो, प्रयोगी बनूं। किसी से बार बार बोलो नहीं ये विघ्न है, ये क्या करूं कैसे करूं, बाबा कहता उलझा हुआ है, शक्तियों का प्रयोग करो, बाबा से शक्ति लो और एकाग्र चित होकर के उस स्थान पर डाल दो। कुछ समय लगता है, कोई कोई बड़े कट्ठर पत्थर जैसे होते हैं ना कड़े, वो तो चेंज होने में टाइम लगता है, तुरंत किसी की रिजल्ट दिखाई देती है, कोई में मासों लग जाता, नहीं चेंज होते, कोई बात नहीं, थको नहीं, अपनी शुभ भावना संपन्न संकल्प रचते चलो, करते चलो, सब परिस्थितियां, सब पेपर, सब बंधन, सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। लेकिन मन बुद्धि बहुत स्थिर एकाग्र है, स्वार्थ वाली भावनाएं नहीं चाहिए। जहां निस्वार्थ भावनाएं आ जाती हैं, शुभ भावनाएं आ जाती हैं, दातापन की भावनाएं आती हैं, दया भाव की भावनाएं आती हैं, वहां पर योग का प्रयोग होता है। जहां पर इन भावनाओं में थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं वहां पर ये योग अपना कमाल नहीं करता। बहुत दया भाव, क्षमा भाव, रहम भाव, कृपा भाव उसको धारण करो, फिर शुभ भावना से योग का प्रयोग करो। ऐसी शुभ चिंतक वृत्ति आपको दिखाई देगा, मेरे जीवन में भी परिवर्तन, मेरे संस्कार भी चेंज हो गए, बहुत चलन नर्म चित, एकदम नम्र चित, सरल चित, ये जो चेहरे पर एकदम तनाव बना रहता ना, तनाव अपने आप भाग जाएगा, बहुत लाइट लाइट लाइट, हल्के हल्के। मम्मा बाबा के शरीर को भी कोई हाथ लगाता था, हम दादी के शरीर को भी कोई ऐसे टच करते थे, हाथ पकड़ते थे, ऐसे लगता था इसमें हड्डी है ही नहीं, इतने नरम, इतने शीतल, बिल्कुल जैसे इन्होंने हड्डी को भी गला दिया योग बल से, इसी जीवन में फरिश्ते बन गए। बाबा जब योग अभ्यास करते और कराते थे तो बच्चे सामने आकर के बाबा को ऐसे गोद में उठा लेते थे, इतने बड़े शरीर में बाबा बैठा है, उनको ये दिखाई नहीं देता था बैठा हुआ देहधारी, वो लाइट ही देखते थे, वैसे उठा लेते थे हल्के रीति से। कितना अभ्यास किया होगा देह मान से डिटैच होने का। तो हम सभी भी सिर्फ ऐसे योग सरल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब ऐसी भट्टी मिली है तो ऐसी भट्टी के अंदर कम से कम सवेरे और शाम 2 घंटा तो करो, बिल्कुल चले जाओ गुफा के अंदर गहरे एकदम, मैं जो हूं जैसा हूं, मैं एक लाइट हूं एक माइट हूं, चलो हम 10 मिनट ऐसा योग करते हैं, फिर छुट्टी देते 7:15, ठीक है 10 मिनट करें। सभी अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठना, अपने लाइट माइट स्वरूप को देखो, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, बिल्कुल इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति, मैं लाइट माइट का पुंज, एक ज्योतिर्बिंदु चमकता हुआ दिव्य सितारा, शांति मेरा स्वधर्म है, मैं शांत स्वरूप पवित्र स्वरूप आत्मा, मन और बुद्धि की मालिक, संकल्पों की भी हलचल से परे, अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर अपने निज वतन में सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व शक्तिवान बाप के सन्मुख ज्ञान सूर्य बाबा के बिल्कुल समीप विराजमान मैं आत्मा, उनके समान सर्व शक्तियों का पुंज बन गई हूं।
शांति सभी को। आवाज में आने की इच्छा नहीं होती होगी, फिर भी समय को देखते हुए यहाँ का योग साथ लेकर के, पूरा करके नहीं कहेंगे, साथ लेकर के जाएंगे। इसी स्थिति में सबको ओम शांति भवन में जाना है। बहुत अच्छा डिटैच होने का, बाबा से शक्ति प्राप्त कैसे करे, हो जाए आदि अनुभव युक्त क्लास सभी ने सुनी, जिसका प्रभाव हर एक की स्थिति पर दिखाई देता है। तो हम राजू भाई को एक हाथ की ताली से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आप आए और हमारे जीवन में, हमारी स्थिति में बाहर आ गई। तो बहुत बहुत थैंक्स राजू भाई का।